वेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से अपने परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं। और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि इस पत्री के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, संगति और सहभागिता के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम दूर में रहकर भी एक साथ आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम फिर से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ प्रभु, हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हम सबकी सहायता करें। इस घड़ी विशेष प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, अपने वचन के द्वारा हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना ज्ञानवाद और अज्ञानवाद के विरुद्ध अपनी गवाही देकर सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु एक पूर्ण मनुष्य था, जिसे उन्होंने जीवित रहते समय वरन पुनरुत्थान के बाद भी छूकर देखा था। वह अनंत जीवन था और हम पर देह धारण करके प्रकट हुआ था। वह परमेश्वर के साथ था, वरन स्वयं परमेश्वर था। उसके द्वारा यह सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य था कि हम विश्वासी उसके साथ सहभागी होकर पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें, अर्थात प्रभु यीशु हमारे रोम रोम में बस जाए, हमारे विचारों में हो जाए, हमारी चर्चा में हो जाए। यूहन्ना यही चाहता है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय उसके चार पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय के चार पद में लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हम देखते हैं कि यहां पर यूहन्ना कहता है कि हम ज्योति में चलें। मेरे प्रियो, इस पत्री को लिखने का यह यूहन्ना का दूसरा उद्देश्य है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। थोड़ा सा आनंद नहीं, बहुत अधिक आनंद, क्योंकि हम सहभागिता में हैं। प्रभु भोज एक सहभागिता है, दान देना भी सहभागिता है, प्रार्थना करना भी सहभागिता है। परंतु यूहन्ना सहभागिता के अनुभव की बात करता है, जैसा पौलुस का विचार था। फिलिपियों की पत्री तीन अध्याय उसके दस पद में वह कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। मेरे मित्रों, सुसमाचार प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य उद्धार पाकर महान आनंद का अनुभव करे। कुश देश के खोजे ने फिलिपुस की सहायता से प्रभु यीशु को जाना और बड़े आनंद के साथ घर चला गया। यूहन्ना की पत्री का उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु की बातों को आपस में बांटे, कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर को हम पर प्रकट करे, कि हमारी सहभागिता में मधुरता भर जाए। यूहन्ना कहता है कि हम सहभागिता पाएं और हमारा आनंद पूरा हो जाए, परंतु यहां एक बाधा है। परमेश्वर के साथ सहभागिता हमारा एक महान महिमामय सौभाग्य है, परंतु एक दुविधा के कारण हमारी आशा टूट जाती है। आइए देखते हैं वह क्या है। पहला यूहन्ना के पत्री एक अध्याय के पांच पद में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र, तो यह खाई कैसे पाटी जाएगी, कैसे भरा जाएगा। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय उसके 33 पद में एक समस्या थी कि कोई तो मध्यस्थ हो जो अय्यूब पर एक हाथ रखे और परमेश्वर पर दूसरा, कि दोनों में संबंध स्थापित हो। तब हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर कहता है कि उसके विचार मनुष्य से भिन्न हैं और मनुष्य के मार्ग परमेश्वर के मार्ग नहीं है। यदि ऐसा है तो एक पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ कैसे चलेगा? जी हाँ, यह एक बहुत कठिन समस्या है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। मेरे प्रियो, मैंने इस पत्री को 3 भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक भाग परमेश्वर का वर्णन करता है। पहला भाग है परमेश्वर ज्योति है, दूसरा भाग परमेश्वर प्रेम है और तीसरा भाग परमेश्वर जीवन है। आप अपने कमरे में बत्ती जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार को दूर करने वाला कारक क्या है? ज्योति क्या है? यूहन्ना जब कहता है कि परमेश्वर ज्योति है तो वह परमेश्वर के अनेक पक्ष प्रकट करता है, तथापि परमेश्वर के सब गुण प्रकट नहीं है। पहला, ज्योति परमेश्वर की महिमा, आभा, सुंदरता और उसके आश्चर्य का वर्णन करती है। क्या आपने सूर्योदय के समय पूर्व में आकाश को देखा है? वह महिमा की दमक होती है। एक बार मैं अपने मित्र के साथ घाटी में था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा मित्र खड़ा होकर प्रभात को देख रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी सुबह क्या कर रहा है, तो उसने कहा, मैं परमेश्वर को दिन की सृष्टि करते देख रहा हूं। उसी समय सूर्य उगा और उसकी चमक फैल गई और दिन में गर्म हो गया। ओह, वह सूर्योदय कैसा सुंदर था! परमेश्वर की महिमा की सुंदरता एवं महिमा। मेरे प्रियो, ज्योति का दूसरा गुण है कि वह स्वयं चमकती है। वह अंधकार को ज्योतिर्मय करती है। वह मुझे मेरे हाथ पर के मैल को प्रकट करती है और मैं अपने हाथ धोकर साफ करता हूं। ज्योति अशुद्धता और दुर्बलता प्रकट करती है। डॉक्टर शॉफर कहते थे, यहां का गुप्त पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय है। जी हां, हमारे पाप स्वर्ग में प्रकट हैं क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। ज्योति परमेश्वर की श्वेत शुद्धता तथा निष्कलंक पवित्रता का वर्णन करती है। वह परिशुद्ध है। सूर्य का प्रकाश ज्योति ही नहीं देता, शोधन भी करता है। आप धूप में कपड़े सूखने के लिए ही नहीं, दुर्गंध दूर करने के लिए भी डालते हैं। सूर्य एक शोधन भी है। परमेश्वर की पवित्रता ज्योति से प्रकट होती है। मेरे प्रियो, ज्योति मनुष्य का मार्गदर्शन भी करती है। ज्योति मनुष्य को आगे बढ़ते रहने का साहस बंधाती है। अंधकार ज्योति का नकारात्मक पक्ष वरन ज्योति का विरोधी है। परमेश्वर की ज्योति और पवित्रता संसार की दुर्व्यवस्था तथा दुष्ट अंधकार के विरोध में है। मेरे प्रियो, अब हमारी दुविधा यह है, मैं इस पृथ्वी पर एक अकिंचन पापी प्राणी हूं। सच तो यह है कि मैं पूर्ण भ्रष्ट हूं। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो मैं परमेश्वर से विद्रोही एक प्राणी ही होता, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि मनुष्य में कुछ भी अच्छा नहीं है। रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है कि उसकी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में वह कहता है कि एक भी धर्मी जन नहीं है। मनुष्य में आंतरिक अच्छाई नहीं है और वह परमेश्वर के साथ विद्रोह की दशा में है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है, मनुष्य के मन के विद्रोह की चर्चा करता है। लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के विरोधी संसार में वास करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, मैं पापी हूं। मैं अनुग्रह के द्वारा तो बचाया गया हूं, परंतु मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे करूंगा? मैं उसके साथ कैसे चलूंगा? मनुष्य ने इसके तीन मार्ग अपनाए हैं, जिनमें से दो तो गलत हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 1:6। लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जी हां, लिखा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। बहुत लोग उसके साथ सहभागिता का दावा करते हैं, जबकि उनकी उसके साथ कोई भी सहभागिता नहीं है। तब आगे कहता है कि हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्या आप समझ सकते हैं कि यूहन्ना इस पद में क्या कहता है? किसी को झूठा कहना अच्छा नहीं। यदि हम अंधकार अर्थात पाप में जीवन जी रहे हैं और कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, तो यूहन्ना मुंह पर कहता है कि हम झूठे हैं। जी हां, आज वह हमसे भी यही कहता है कि हम झूठे हैं। यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहने के कारण उसका चित्र भी स्त्रियों के जैसा बनाया गया है, और हम भी उसे बड़ा ही मृदु स्वभाव एवं मृदु भाषी सोचते हैं। परंतु प्रभु यीशु उसे गर्जन का पुत्र कहता है। स्वर्ग में वह चित्रकार जिसने यूहन्ना का ऐसा चित्र बनाया, यूहन्ना की गर्जन और बिजली को समझ जाएगा जब यूहन्ना का सामना वह करेगा। मेरे मित्रों, यूहन्ना एक कठोर मछुआरा था। वह कहता है कि यदि आप कहें कि आप परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं और अंधकार में चलें, तो आप झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पवित्र है। जी हां, अंधकार और ज्योति का मेल नहीं है। जहां पर ज्योति है, वहां पर अंधकार नहीं होगा। समाचार पत्र में एक मसीही पंथ के बारे में लिखा था कि वे व्यभिचारी हैं, जबकि वह पंथ मूसा की व्यवस्था का पालन करके जीवन के अन्य स्तर पर पहुंचने का दावा करता था। मूसा की 10 आज्ञाओं में से एक है, तू व्यभिचार मत करना, निर्गमन की पुस्तक 20:14 उसके 14 में। मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ सहभागिता का अर्थ है ज्योति में रहना। यदि आपके जीवन में कोई पाप है, तो आप उसके साथ सहभागिता में नहीं हैं। आप उसे अपने स्तर तक ही नीचे नहीं गिरा सकते हैं। आपको पवित्र बनना है ताकि आप उसके साथ सहभागी कर सकें, सहभागिता रख सकें। पहला यूहन्ना के पत्र 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लिखा है, हम भी ज्योति में चलें, अर्थात परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलें। डॉक्टर आयरन साइड इस पद के विषय में अपनी उलझन की चर्चा करते थे। लहू का शोधन हमारे द्वारा ज्योति में आचरण करने पर निर्भर करता है। उन्होंने इस पद का अर्थ यह समझा कि यदि हम परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने में निष्ठावान हैं, तो परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। तब उन्हें ध्यान आया कि यहां लिखा है, हम भी ज्योति में चलें। मुख्य बात तो यह है कि हम कहां चलते हैं, न कि हम कैसे चलते हैं। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन को अपनी पापी हृदय में चमकने देते हैं? यह सोचकर अंधकार में चलना अति संभव है कि हम ज्योति में हैं। मेरे प्रियो, एक बार रविवारीय आराधना के बाद मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा, क्या मुझे गिलहरी मारने का शौक है, क्योंकि वह अपने खेत में जा रहा था। मैंने कहा कि मेरे पास भी कुछ करने के लिए नहीं है, अतः मैं उसके साथ जाऊंगा। उसने मुझे एक छोटी सी लकड़ी दे दी। उसके खेत पर एक छोटी सी पुलिया थी जिसके दो सिरे थे। उसने कहा, आप इस रास्ते से पहाड़ का रास्ता देखें और आप चक्कर काट करके आएं, और मैं इस रास्ते से आऊंगा और हम दोनों अपने खेत में ही मिलेंगे। मार्ग में वर्षा होने लगी तो मैं उस पहाड़ी की एक गुफा में घुसकर बैठ गया। आधे घंटे बाद जब मुझे ठंड लगी तो मैंने वहां पड़े सूखे पत्तों का ढेर लगाकर उनको जला दिया। आग के प्रकाश में जब मैंने उस गुफा के चारों ओर देखा तो पाया कि मैं अकेला नहीं हूं। वहां बहुत से छिपकलियां थी और अनेक मकड़ियां थी, साथ ही एक कोने में सांप कुंडली मारकर बैठा मुझे घूर रहा था। मैं तुरंत वहां से बाहर निकला और खेत की ओर बढ़ गया। जब मैं खेत में पहुंचा तो पूरा भीग चुका था। मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक उस गुफा में अंधकार था मैं निश्चिंत वहां बैठा था, परंतु प्रकाश उत्पन्न होते ही वहां का दृश्य मुझे दिखाई दिया और मैं अब वहां सुविधा का बोध नहीं पा रहा था। मेरे मित्रों, आज आराधनालयों में असंख्य आराधक हर रविवार को जाते हैं परंतु परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। वे वास्तव में अंधकार में बैठे हैं। वे नाना प्रकार के विषयों पर विचार सुनते हैं और सुविधा पूर्वक बैठते हैं। वे अबोध हैं। जब परमेश्वर के वचन की ज्योति फैलेगी तब उन्हें बोध होगा कि वे पापी हैं और वे परमेश्वर को अपने स्तर पर नहीं ला सकते। यूहन्ना कहता है कि यदि कोई कहे कि परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता है और पाप का जीवन जिए तो वह झूठा है। मेरे मित्रों, आज नैतिक मान्यताओं में महान परिवर्तन आ रहा है और मनुष्य अपने पापों को तर्क के आधार पर स्वीकार्य बताता है। आप परमेश्वर को अपने स्तर तक नहीं गिरा सकते हैं। यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता हो ही नहीं सकती। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और ऊपरी दिखावा करने के लिए मनोवैज्ञानिक चाल चल रहे हैं। हमारी कलीसियाओं में पाखंडी हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता है परंतु उनका जीवन पाप मग्न है। यूहन्ना कहता है कि वे झूठे हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हैं और पाप का जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन की ज्योति में आप अपने पाप को देख पाते हैं, तो क्या आप उद्धार से वंचित हैं? बत्ती के प्रकाश में मैंने देखा कि मेरे हाथ पर मिट्टी है, तो मैंने जाकर उसे धो लिया। यूहन्ना कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करना वर्तमान काल की क्रिया है, अर्थात यीशु का लहू हमें धोता रहता है। आप उद्धार से तो नहीं परमेश्वर की सहभागिता से वंचित हैं, जब तक कि आप धोए ना जाएं। मेरे मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वासियों की देह महत्वपूर्ण है, परंतु परमेश्वर का परिवार भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और आप में पाप है तो परमेश्वर आपके साथ मसीह से रहित पापी के समान व्यवहार नहीं करेगा। वह आपके साथ एक आज्ञा न मानने वाली संतान का सा व्यवहार करेगा। वह आपको दंड देगा। याद रखें कि उसने दाऊद को भी दंड दिया था और हनन्याह तथा सफीरा को भी दंड दिया था, वे भी नहीं बचे थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर को अपने स्तर तक गिराने का आपका प्रयास किसी भी काम का नहीं है। तथापि मनुष्य पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य में मेल करवाने का यही मार्ग प्रायः चुनता है, तर्क वितर्क करके अपने आप को सही ठहराता है। परंतु यूहन्ना मुझसे और आपसे यही कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। जी हाँ, ज्योति के सामने आपके जो भी पाप हैं साफ साफ दिख जाते हैं, और यही कारण है कि मनुष्य पाप करके परमेश्वर के सम्मुख नहीं छिप सकता। चाहे आप संसार में कुछ भी करें, संसार आपको नहीं देख सकती, परंतु परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि वह ज्योति है। मेरे मित्रों, आइए हम आज इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को जांचें। क्या कहीं हम भी पापमय जीवन तो नहीं जी रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चय जानिए कि यूहन्ना कहता है कि हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है। इससे पहले कि हम दंड पाएं, परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसके निकटता में आ जाएं, ताकि हम ज्योति के संतान होकर परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकें। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर की संतान के समान अपना जीवन जिएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं? मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं? आ मेरे पास आ, मुझसे न दूर जा। के